नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ओला, हेलो एंड वेलकम। मैं प्राची स्वागत करती हूँ आपका पॉडकास्ट कहानी पे, जहाँ लेके आती हूँ मैं आपके लिए तरह तरह की छोटी बड़ी पुरानी नई लोकल या विदेशी और जानी या फिर अनजानी कहानियाँ आपके लिए। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये आसाम के बाल साहित्य का हिस्सा है। ये कहानी स्थानीय भाषा में लिखी गई होगी और उसका अनुवाद किया गया है बाद में। कहानी का शीर्षक है वह रुपया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भवेंद्र नाथ शैकिया। मनु और तनु की माँ को उस दिन सुबह बहुत गुस्सा आ गया। आए भी क्यों नहीं, ऐसी स्थिति में किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। फिर जब अपने बच्चों की बुरी आदत दिखाई पड़ेगी, तब तो कहना ही पड़ेगा। बेचारी को सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद ही थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिलती है। घर को साफ करना, नल से पानी भरना, खाना पकाना आदि कितने ही काम करने पड़ते हैं। ऐसे काम के बीच बीच में मनु तनु को जगाना, अरे उठो उठो भाई, दिन कितना निकल आया है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? रोज इस तरह तुम्हें चिल्लाकर जगाना पड़ता है, तुम लोग सुनते नहीं हो। राखाल और मंटू किस तरह चिल्ला चिल्ला कर कविता याद कर रहे हैं, तुम लोग पड़े पड़े सुनते रहते हो। छी छी छी, तुम्हें बुरा नहीं लगता, अब तक सो रहे हो? इस तरह वो बकबक कर इधर उधर चलती रहती है। कितने काम हैं इनके, नहाना धोना है, नहाने के कपड़े साफ करने हैं, उन्हें सुखाना है, मंदिर जाकर दीपक जलाना है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना मतलब प्रेयर, इसके बाद सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था मतलब तैयारी करनी है, बहुत काम है। इतने पर ये दोनों लड़के माँ के कामों को बढ़ाते रहते हैं। आज की ही बात लो, नाश्ते के लिए घर में कुछ नहीं है, बच्चे तो छोड़ेंगे नहीं, इसी कारण माँ ने पीठा के लिए कुछ चावल भिगो रखा। पीठा एक प्रकार की राइस डिश है, नहाने धोने के बाद पीठा बनाएंगी वो। इतने कामों के बीच पीठा बनाना क्या आसान काम है? इधर 9:30 बजे मनु तनु को स्कूल तथा उसके पापा को कार्यालय भी भेजना है, कार्यालय मतलब ऑफिस। उनके लिए भोजन की तैयारी करनी होगी, भोजन इज फूड। माँ पीठा बनाने बैठी ही थी कि मनु ने कहा, माँ मुंह धोने का पानी दो। फिर तनु ने कहा, माँ मुझे भी मुंह धोने को पानी दो। माँ तो गुस्से में थी ही, फिर इनकी चिल्लाहट सुनकर कहा, खुद ले लो, इतने बड़े हुए हो, मुंह धोने का पानी भी मुझे लाकर देना पड़ता है। मनु ने कहा, हाँ तुम ला दो। थोड़ी देर बाद फिर तनु ने कहा, ला दो ना पानी माँ, मैं काम कर रही हूं, अपने से ले नहीं सकते, खुद बाथरूम से पानी लाकर मुंह धो लो, नहीं तो बैठे रहो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, तुम्हें इस तरह बैठे हुए देखेंगे तो बस हो जाएगा। कहती हुई माँ पीठा बनाने में लग गई। माँ ने ठीक ही कहा था, उनके पिताजी रोज पौ फटते ही टहलने चले जाते थे, पौ फटते मीन्स अर्ली मॉर्निंग, करीब 6 मील तक पैदल चलकर घर लौटते थे, 6 miles walk। आज घर आते ही झपकी लेते बैठे दोनों लड़कों को देखकर पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? झपकी लेते मीन्स स्टिल इन स्लीपी मोड। माँ ने रसोई घर से ही चिल्लाकर कहा, रसोई घर इज द किचन, इन्हें मुंह धोने के लिए पानी मुझे ला देना है। सुनते ही पिता ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली, तो नहाने के घर तक दोनों भाइयों को दौड़ते ही बना, मीन्स द टू ब्रदर्स स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द बाथरूम बाय देमसेल्व्स। इससे तनु मनु की माँ को झटका सा लगा, इससे पहले भी ऐसी बातों को लेकर उन्हें बुरा लगा था। मनु तनु को वो इतना प्यार करती हैं कि इन्हें रसोई बनाकर खिलाकर स्कूल भेजना तो है ही, सोते वक्त मच्छरदानी लगा देना, उसे ठीक ठाक कर उन्हें सुला देने का काम भी वहीं करती हैं। बेसिकली मीन्स दैट शी कुक्स फूड फॉर देम, टेक्स केयर ऑफ देम, सेंड्स देम टू स्कूल, ड्यूरिंग स्लीपिंग बेड टाइम शी पुट्स ऑन द नेट बिकॉज देयर आर मस्कीटोज इन द हाउस एंड शी डज एवरीथिंग फॉर देम। अपने बच्चों की भलाई के लिए वह क्या कुछ नहीं करती, लेकिन ये बच्चे उसकी किसी भी बात की परवाह नहीं करते, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग दैट शी सेज। पर जब भी उनके पाप एक शब्द भी बोलते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। इसी बात का माँ को दुख है। She feels sad about it. चाय नाश्ते के समय फिर दोनों धम मचाने लगे। माँ ने उन्हें बराबर बराबर पीठा खाने को दिया। She gave equal amounts of pita to both of them. लेकिन तनु के पीठे के बीच का भाग कुछ फूला हुआ था। बस दूसरे को भी ठीक उसी तरह का पीठा चाहिए। यदि ऐसा पीठा नहीं है तो तनु का पीठा ही उसे देना पड़ेगा। इस बार भी उनके पिताजी की लाल आंखें ही काम आई। They didn't listen to her again, and the father had to show eyes so they would listen. उन्होंने कुछ गंभीर शब्दों में कहा। He got serious and said, खाना नहीं है तो चले जाओ, किताब पढ़ो जाकर, जाओ। मनु सर नीचे करके चाय पीने लगा। इनका उपद्रव माँ से सहन नहीं होता। माँ इज टायर्ड ऑफ देयर टैंट्रम्स। रेडियो लगाने हेतु भीतर जाकर जब बिस्तर की हालत देखी तब और धीरज रखना संभव नहीं हुआ। शी वेंट इन एंड थॉट शी वुड पुट ऑन द रेडियो म्यूजिक ऑन इट, बट देन शी सॉ द बेड एंड आफ्टर सीइंग इट शी लॉस्ट ऑल हर पेशेंस। वह आग बबूला हो गई। बहुत गुस्सा आ गया उन्हें। बिस्तर की ओर देखकर चिल्लाई, ये किसका काम है? आज ही नया बिस्तर चद्दर बिछाया था, इस पर कीचड़ लगे, 4-5 पैरों के निशान। इस पर मां का नाराज होना स्वाभाविक था। मींस दैट इट वॉज नेचुरल दैट व्हेन शी सॉ अ क्लीन फ्रेश बेडिंग दैट शी हैड पुट इन द मॉर्निंग ऑल डर्टी विद स्टैम्प ऑफ फीट देन शी विल गेट दैट मैड। चाय के बाद और भोजन से पहले तनु मनु की माँ रोज बिस्तर ठीक ठाक करती हैं। कल ही धोबी के यहाँ से कपड़े आए थे, आज ही ये कपड़े बिछाए गए थे। करीब 8:30 बजे जब माँ भीतर पहुंची तो पलंग पर यह कांड देखा। बिस्तर पर कौन चढ़ा था? माँ ने गरज कर पूछा। She yelled and asked. मनु ने कहा, मैं नहीं चढ़ा। तनु ने कहा, मैं नहीं चढ़ा। तब कौन आया? माँ ने धमकी दी। इनके अलावा बिस्तर पर चढ़ने के लिए कौन आ सकता है? पैरों के आकार से भी इसे समझा जा सकता है कि मनु या तनु के पैरों के दो निशान हैं। इस घर में और है ही कौन? माँ बाप तथा ये दोनों बच्चे ही तो हैं। लेकिन इन दोनों में से किसके पैरों के निशान हैं ये? मैं जिस दिन की बात कह रहा हूं उस दिन उनकी उम्र 8 साल 2 महीने 4 दिन की थी। दोनों जुड़वा भाई हैं, दे आर ट्विन ब्रदर्स 8 ईयर ओल्ड। दोनों की ऊंचाई भी एक सी है, सेम हाइट। मोटे तगड़े और देखने में भी एक से हैं, दे लुक अलाइक एंड दे आर हेल्दी। कुल मिलाकर दोनों में भेद करना आसान नहीं है। इट्स वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब कीचड़ सने पैरों का निशान किसका हो सकता है? इट वॉज हार्ड टू टेल हूज फीट इम्प्रेशंस वर ऑन द बेडशीट। माँ को कुछ समझ में नहीं आया। असमंजस में पढ़कर फिर माँ ने पूछा। शी वॉज परप्लेक्स्ड एंड शी आस्क्ड, बताओ मनु, तुम चढ़े थे बिस्तर पर? मनु ने कहा, मैं नहीं चढ़ा माँ। फिर तनु से पूछती हैं, तुम चढ़े थे? उसने भी कहा, ना माँ, मैं नहीं चढ़ा हूं। गुस्से में माँ चिल्लाने लगी। बच्चों के पिता बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहे थे। He was in the garden taking care of plants. पत्नी का स्वर सुनकर वो वहां आए और आंखें लाल करते हुए बोले, तू चढ़ा था? He heard the voice of his wife and he came in and started asking. मनु नहीं कहकर रोने लगा। कुछ दूरी पर खड़े तनु से पूछा भी नहीं, वह भी जोर जोर से रोने लगा। यही मुश्किल है कि किसी एक के रोने से दूसरा भी रोने लगता है। मनु तनु के पिताजी मिजाजी आदमी हैं, किसी बात पर लग जाए तो आसानी से उसे छोड़ते नहीं हैं। मिजाजी मतलब हैज अ स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट। उन्होंने बच्चों को धमकी देकर कहा, ठीक है, आज तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे। आज ही क्यों, कभी भी तुम लोगों को स्कूल जाना नहीं होगा। यदि तुम लोगों ने सच बोलना ही नहीं सीखा तो स्कूल जाकर क्या होगा? दूसरे लड़कों को भी झूठ बोलना ही तो सिखाओगे? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक तुम लोग सच नहीं बोलोगे तब तक स्कूल नहीं जाओगे। मनु तनु के पिता को सचमुच बड़ी तकलीफ पहुंची थी। इन दोनों या इन दोनों में से एक तो जरूर बिस्तर पर चढ़ा था, लेकिन ये अपना दोष स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों या दोनों में एक ने झूठ कहा है। ये छोटे बच्चे यदि अभी से झूठ बोलने लगे तो आगे क्या होगा, यह बड़े दुख की बात है। मनु तनु सचमुच स्कूल नहीं गए। तनु ने दोपहर को अपनी माँ से कहा, मैं सचमुच बिस्तर पर नहीं चढ़ा था माँ। कुछ ही दूरी पर मनु था, उसने भी माँ के पास पहुंचकर कहा, मैं भी सचमुच बिस्तर पर नहीं चढ़ा था माँ। उस दिन रात को मनु और तनु जब एक साथ सो रहे थे तो तनु ने मनु से कहा, मैं तो बिस्तर पर उठा ही नहीं था, तू सच क्यों नहीं बोलता? मैं तो जानता हूं तू ही बिस्तर पर चढ़ा था। तेरे झूठ बोलने के कारण ही तो पिताजी ने आज खाना नहीं खाया, माँ ने भी एकदम थोड़ा सा खाया है। कल हमें पिताजी जरूर पीटेंगे। मनु ने कहा, मैं भी उठा नहीं था। वाह, क्या मैं नहीं जानता? तनु ने कहा। तूने क्या देखा था? मनु ने पूछा। नहीं देखा तो क्या हुआ, जब मैं उठा ही नहीं तो तू ही जरूर उठा होगा, तनु ने कहा। बिस्तर पर असल में मनु ही उठा था, लेकिन तनु ने जब कहा कि वह बिस्तर पर नहीं उठा तो मनु भी उसी को दोहराएगा। बिस्तर पर लेटे लेटे मनु तनु के माँ बाप अपने बच्चों की इस बुरी आदत के बारे में ही सोच रहे थे। उन्होंने तय किया कि किसी तरह इनमें दोषी कौन है स्वीकार करवाना ही होगा। यदि आज इस दोष को छोड़ दें तो आगे बड़े बड़े झूठ बोलने लगेंगे। दोष मीन्स अ फ्लॉ और डिफेक्ट और अ ब्लेम। आखिर लड़कों के बाप को सूझा कि जो अपना दोष मान लेगा उसे एक रुपया इनाम दिया जाएगा, तब शायद मान जाएं। रुपए के लोभ में सच बोलने पर उन्हें पकड़ा जा सकेगा। लोभ मतलब ग्रीड, उसकी चाहना में उस रुपए की। दूसरे दिन इनके बाप ने कैलेंडर में एक रुपया लटका कर रख दिया और दोनों लड़कों को पास बुलाकर कहा, जो सच बोलेगा उसी को यह रुपया मिलेगा। उस दिन सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद से तनु बड़ा गंभीर लग रहा था। गंभीर मतलब सीरियस था, सोच में था। पिछली रात को मनु को तो गहरी नींद आ गई, पर तनु बहुत देर तक जगता रहा। वह सोच रहा था कि उनके माँ बाप ने उसे खराब लड़का समझ लिया है। झूठ बोलने के कारण उनके पिता बगैर कुछ खाए ऑफिस चले गए। स्कूल के साथी यदि हमसे स्कूल न आने का कारण जान जाएं, तो उन्हें कितना लज्जित होना पड़ेगा। लाइक द फ्रेंड्स एट स्कूल, अगर उन्हें पता चले कि झूठ बोलने के कारण वो स्कूल नहीं गए थे तो उन्हें कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। दे विल बी एम्बेरस्ड। इन बातों को सोच सोच कर उसे बहुत बुरा लगा। नींद से पहले ही उसने यह निश्चय कर लिया था। निश्चय मतलब फैसला कर लिया था, ही डिसाइडेड। तो उसने ये निश्चय कर लिया था कि मनु ने तो झूठ बोल ही दिया है, सो वह अपने ऊपर ही यह दोष ले लेगा। ही विल से दैट ही डिड दैट। वही कहेगा कि बिस्तर पर मैं ही चढ़ा था। तब माँ बाप का मन बदल जाएगा, ये फिर स्कूल जा सकेंगे। हो सकता है माँ बाप यह पूछे कि उस पर क्यों चढ़ा था और पहले क्यों झूठ बोला था। ये कहकर वे मुझे पीट भी सकते हैं। पीट लें, उससे मुझे डरना नहीं चाहिए। सुबह जब कैलेंडर में एक रुपया लटका कर इस बारे में पिता कह रहे थे, तब तनु ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। जैसा उसने रात को सोचा था उसी तरह धीरे से बोला, बिस्तर पर मैं चढ़ा था पिताजी। पास खड़े मनु ने चिल्लाकर साथ साथ कहा था, नहीं, कीचड़ लगे पैरों से मैं ही बिस्तर पर चढ़ा था, मैं चढ़ा था पिताजी। तब तनु ने कहा, हाँ यह तो ठीक है कि तू ही बिस्तर पर चढ़ा था, पर मेरे कहने के बाद तू सच बोल रहा है। पिताजी रुपया तो मिलना ही चाहिए। तनु की बात सच है। पिता जब रुपए के बारे में कह रहे थे तब मनु अपनी पढ़ाई की मेज पर यूं ही बैठा था। उसके मुंह में जबान नहीं थी। He was just sitting silently, even though he knew that he did it. He did not accept it. तनु के मान लेने के बाद ही उसने अपने को दोषी मान लिया। As soon as तनु said कि मैं हूँ दोषी, like he accepted it, that's when मनु said, oh, it was me, not him. मनु तनु की बातों पर पिताजी को हंसी आ गई। उस रुपए को लेकर भी वे मुश्किल में पड़ गए। अब इस रुपए का क्या होगा? इन दोनों में से यह रुपया किसको दें? तनु ने बिस्तर पर चढ़े बिना ही मान लिया कि बिस्तर पर वही चढ़ा था। उसके मान लेने के कारण मनु ने कहा कि वही बिस्तर पर चढ़ा था। सचमुच वही बिस्तर पर चढ़ा था। मनु तनु के बाप आज भी तय नहीं कर पाए हैं कि रुपया किसको दिया जाए। वह रुपया आज भी उस कैलेंडर पर टंगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है हमारी कहानी वह रुपया। काफ़ी दिलचस्प थी ये कहानी। बहुत ही सामान्य विषय पे, कॉमन टॉपिक पे बेस्ड थी ये कहानी। और कहानी के संदर्भ से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि इस कहानी की घटना उस ज़माने की है जहाँ एक रुपए का काफ़ी मोल हुआ करता था। पर लेखक ने झूठ और सच के इस टॉपिक को, इस विषय को, इस छोटी सी कहानी में बहुत ही प्यारे ढंग से और एक मज़ेदार किस्से के रूप में सुनाया है। मेरे नन्हे एवं बड़े दोस्तों, आप लोगों से अलविदा लेने के पहले मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि मुझे लिखना ना भूलिए, मुझे बताना ना भूलिए आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। और उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि है write@prachigangwal.com, writee@prachigangwal.com। और हाँ, इस बार मैं ये भी देखना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई आपके खुद का जिया हुआ मोमेंट हो, कोई पल हो, या ऐसी कोई घटना हो जिसमें सच और झूठ के कुछ क्षण रहे हों, या किसी दोस्त के साथ या आपके बच्चे के साथ, और आप मुझसे वो शेयर करना चाहें, तो ज़रूर बताइएगा। उसे कहानी के रूप में प्रसारित करने के लिए मैं ज़रूर इच्छुक रहूँगी। तो लिखना ना भूलिए, और सुनते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट कहानी प्राची की ज़ुबानी। अलविदा।